ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना 2024 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पत्रकार नितिन कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विशाल शर्मा।
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू करने की घोषणा की है और ये योजना 1 अप्रैल 2024 से 4 महीने के लिए लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 क्या है और इसके क्या दूरगामी परिणाम होने वाले हैं और देश के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को लेकर के इसके क्या असर होने वाले हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं पत्रकार नितिन कुमार जी, जो कि ऊर्जा मामलों पर विशेष रूप से कवर करते हैं, ऊर्जा मामलों को कवर करते हैं। नितिन जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये जो सरकार योजना लेकर के आई है और केवल 4 महीने के लिए लेकर आई है, इस योजना को लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य आप क्या देख रहे हैं?
जो ये योजना है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, ये एक फॉलो अप है सरकार नियंत्रण रूप से 2015 से। तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हमेशा सरकार तत्पर रही है, कुछ न कुछ योजनाएं सरकार ने लाई हैं। 2015 में स्टार्टिंग की थी सेम से
जी,
सेम जब 2019 में खत्म हुआ तो उसके बाद सेकंड फेज आया सेम का, और उसके बाद अभी जब 31 मार्च को सेम 2 खत्म हो रही है तो सरकार नहीं चाहती कि जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट जो देश में गति पकड़ रहा है वो रुके। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 का अनाउंसमेंट किया है। स्कीम 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 जुलाई 2024 तक रहेगी। इसके जरिए सरकार चाहती है कि देश में इफेक्टिव, कॉम्पिटिटिव और रेजिलियंट एक ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, जिससे हमारा देश भी इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आगे बढ़े। ये सरकार का 3 इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पे सरकार फोकस किया है, जिसमें वो चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल इंक्रीज हो देश में, ग्रीन मोबिलिटी बढ़े, और दूसरा ईवी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग जो ईवी का होता है भारत में, उसमें भी गति आए।
जी, ये जो फेम 2 का आपने जो जिक्र किया, फेम 2 की जगह इसको लाया जा रहा है या अभी ये केवल एक, जैसे कि फेम 2 खत्म हो रही है योजना 31 मार्च 2024 को, तो कुछ समय के लिए ही ये योजना जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना लाई जा रही है, उसके बाद क्या हम सरकार की तरफ से फेम 3 योजना की भी उम्मीद कर सकते हैं ताकि देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो निर्माता हैं इलेक्ट्रिक वाहनों के, उनको और प्रोत्साहन मिल सके?
अभी जो सरकार ने ये नई योजना लेके आई है उसके अंदर सिर्फ 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को कवर किया है, जबकि जो फेम स्कीम था उसके अंदर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और बसेस भी इंक्लूड की गई थी। हम ये नहीं कह सकते कि ये रिप्लेसमेंट है फेम का, क्योंकि फेम का जो दायरा था वो 31 मार्च तक ही निर्धारित किया गया था, तो फेम ऑफिशियली वो खत्म हो जाएगी 31 तारीख को। लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो गति है उसमें कहीं विराम आए, इसलिए सरकार एक नई स्कीम लाई, क्योंकि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा, जिसको सहायता की जरूरत थी, जिसको गवर्नमेंट का सपोर्ट सबसे ज्यादा चाहिए था, इसीलिए गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 सेगमेंट को फोकस किया है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि गवर्नमेंट की एक और स्कीम है जिसका नाम है PLI ऑटो, 26,000 करोड़ के लगभग की वो स्कीम है, जिसके अंदर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स और जो OEMs हैं जो गाड़ियां बनाती हैं उनको सब्सिडी मिलती है। तो सरकार ने उनके लिए ऑलरेडी एक स्कीम अनाउंस की हुई है। इसके अलावा सरकार ने एक PLI और ACC बैटरी के लिए की हुई है, जिसके कारण ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन कम डाउन, क्योंकि बैटरी के लिए जब सब्सिडी स्कीम है तो वो बैटरी की कॉस्ट को कम करेंगी, और दूसरी जो ऑटो के लिए जो स्कीम है वो व्हीकल की कॉस्ट को कम करने का काम करेंगी। लेकिन फिर भी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इंडस्ट्री को सरकार मझधार में नहीं छोड़ना चाहती थी, इस वजह से इस नई स्कीम को लाया गया है। इस पे अभी क्लियर फैसला सरकार ने नहीं दिया है कि सिर्फ 4 महीने के लिए क्यों, लेकिन इसका जो ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनसे बात करके ये समझ आता है कि सरकार चाहती है अभी इसको रखा जाए, उसके बाद जब नई सरकार बनेगी तो इस स्कीम को या तो बदला जाएगा या इस स्कीम के अंदर एक बड़ा आउटले ऐड कर दिया जाएगा जिससे ये स्कीम आगे चलती रहे।
जी जी, नई योजना है, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पर कितनी सब्सिडी दी जाने वाली है और 3 व्हीलर्स पर कितनी सब्सिडी रहेगी, इस बारे में आप कुछ हमें बता पाएंगे?
देखिए फेम से ये स्कीम जो है ये इस मामले में भी बहुत अलग है, क्योंकि फेम के अंदर जो सब्सिडी का दायरा था वो शुरुआत के दौर में फेम 2 के अंदर वो 66,000 रुपीज का था, लेकिन गवर्नमेंट ने बीच में क्योंकि सब्सिडीज कैन नॉट रन फॉर एवर तो उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने बीच में सब्सिडी को कम किया, 22,500 किया। लेकिन इस स्कीम में सरकार ने सब्सिडी को टू व्हीलर के लिए रखा है, सिर्फ मैक्सिमम कैप जो सरकार ने रखी है वो 10,000 रुपए रखी है। वहीं अगर तीन पहिया वाहनों की बात करें तो वहां सब्सिडी दो भागों में बांटी गई है। जो ई रिक्शा है उसके लिए सब्सिडी रखी गई है 25,000 रुपए, लेकिन जो L5 जो बड़ा रिक्शा होता है उसके लिए सब्सिडी का हाईएस्ट सब्सिडी जो कोई क्लेम कर सकता है वो है 50,000 रुपए।
अगर हम सरकार के नितिन जी वाहन पोर्टल के आंकड़ों पर नजर डालें तो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माताओं ने जनवरी 2024 में 81,608 इकाइयों की बिक्री की, जो एक साल पहले से 26% और महीने दर महीने अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हम देखें तो 8% अधिक है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बिक्री भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो हम ये देख रहे हैं कि दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी हम देख रहे हैं कम हो रही है, और जबकि तिपहिया वाहनों पर हम देख रहे हैं कि 25,000 आपने बताया कि तिपहिया वाहनों पर और ई रिक्शा पर 50,000 रुपए निर्धारित की गई है, इसके पीछे क्या वजह आप देख पा रहे हैं?
देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पेस है देश में वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। पिछले साल ये 5% था, इस साल 6.3% से ऊपर आ गया था। अगर हम कंपैरिजन करें टू व्हीलर और थ्री व्हीलर की सब्सिडी में जो ये अंतर है उसका, तो उसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि टू व्हीलर जो है वो मार्केट अभी पेस पकड़ चुका है। आप देखेंगे हर महीना लगभग 1,00,000 व्हीकल हमारे देश में बिक रहे हैं, जिसके अंदर लगभग 60-65% दो पहिया वाहन है। वहीं जो तीन पहिया वाहन है वो एक आय का संसाधन भी बनता है। तो सरकार चाहती है कि ना सिर्फ हम इलेक्ट्रिक वाहनों की पेनिट्रेशन को बढ़ाएं, बल्कि सरकार चाहती है इससे रोजगार के भी माध्यम जनरेट हों, इसलिए तिपहिया वाहनों पे सब्सिडी का जो दायरा है वो बड़ा रखा गया है।
जी, यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो दोपहिया वाहन जो होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा लागत जो होती है वो बैटरी की होती है, और बताते हैं कि 40% से भी ज्यादा लागत होती है। क्या ये हम आने वाले समय में बैटरी की लागत और कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी होता भी देखेंगे आने वाले समय में, आपको लगता है ऐसा?
निश्चित रूप से, जब हमारे देश के अंदर जो दो स्कीम जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया, ACC PLI और PLI ऑटो, जब ये दोनों स्कीम्स चालू हो जाएंगी, अभी दोनों स्कीम एट प्रेजेंट चालू हैं, लेकिन अभी डिसबर्समेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी जेस्टेशन पीरियड के अंदर है, तो अब जब हमारे देश में सेल्स बनना स्टार्ट होंगे, ईवी सेल्स बनना स्टार्ट होंगे, तो निश्चित रूप से बैटरी का कॉस्ट कम होगा, और अगर बैटरी का कीमत कम होता है तो निश्चित रूप से वाहन का भी कीमत कम होगा। अभी हम बहुत ज्यादा स्केल में इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, लेकिन जब हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है देश का, तो उसके साथ साथ कीमतें भी कम होंगी, जैसा हम हर सेक्टर में देखते हैं। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है इसके अंदर भी कीमतें भविष्य में कम होंगी।
और अगर हम ईवी विनिर्माण पर इकोसिस्टम की बात करें, ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की बात करें, तो इसको बढ़ावा देने में अभी आप क्या और चुनौतियां देखते हैं सरकार के सामने या उद्योग के सामने?
अभी चुनौतियां अगर हम बात करें कि बड़ा स्केल पे, तो सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है एक वाहन को बनाने के लिए, जिसके अंदर बैटरी, जिसका आपने अभी चर्चा किया, तो सबसे महत्वपूर्ण तो वही है कि हमारे पास बैटरी को जो बनाने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो लिथियम चाहिए, जो मैग्नीज चाहिए, वो अभी यहाँ पे या तो प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, लिथियम जैसे प्रोडक्ट जो 70% एक बैटरी में डलता है, तो उसका यहाँ पे सोर्स जरूर भारत में अभी मिला है, लेकिन उसका प्रोडक्शन भारत में नहीं होता है, उसका प्रोसेसिंग भारत में नहीं होता है, हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं उस क्षेत्र में। इसी कारण हमारा बहुत ज्यादा ग्रोथ का जो स्पेस है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमें किसी दूसरी देश पे निर्भर रहना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा कोरोना काल के अंदर भी हमारी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी, उसके बाद तमाम कंपनियों ने अपना दूसरा एक सप्लाई चेन का निर्माण किया, ना कि सिर्फ एक ही देश पे डिपेंडेंट होके, तो वो चीजें अभी कहीं ना कहीं सुधर रही हैं। भविष्य में जिस तरीके से कंपनियां आ रही हैं क्षेत्र के अंदर, अभी लगभग 650 स्टार्टअप्स हैं देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर हैं। तो अगर उनकी गति बढ़ती है, अच्छे स्टार्टअप आते हैं, अच्छे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, आप देखिए शुरुआत के दौर में जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं दूर हट रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आने के लिए, लेकिन अभी बड़े प्लेयर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की बात कर रहे हैं, प्लान है उनके पास, तो निश्चित रूप से भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बड़ा इंडस्ट्री बनके सामने आएगा।
ये जो आपने आपूर्ति श्रृंखला की भी बात की, सप्लाई चेन की भी बात की, क्या ये योजना जो सरकार अब नई लेकर के योजना आई है, इससे आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, ऐसा लगता है आपको?
निश्चित रूप से, कोई भी अगर सेक्टर जब बड़ा होता है तो उसके अंदर नए नए तकनीकें आती हैं। अभी जब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट बढ़ेगा तो उन इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ेगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को समझेंगे, उन रिसर्चर्स की भी जरूरत पड़ेगी जो बैटरी केमिस्ट्रीज को समझेंगे, उन मैकेनिक्स की भी जरूरत पड़ेगी जो एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से उस सेक्टर के अंदर विकास और रोजगार जरूर बढ़ेगा, और हर पहलू जहाँ जहाँ कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगी वहाँ वहाँ हमें नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो जितने स्टार्टअप्स आएंगे उनमें ना केवल सिर्फ प्रोडक्शन लाइन में बल्कि मैनेजमेंट के अंदर और जितना उनका डीलरशिप होगा वहाँ पे भी रोजगार डायरेक्ट इनडायरेक्ट दृष्टि से जरूर मिले।
ये इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें तो अभी लागत की बात हम कर रहे थे, बैटरी की कीमत सबसे ज्यादा होती है, और अभी भी जो एक आम उपभोक्ता में, एक आम खरीदार में ये अभी भी एक विचार मन में रहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले थोड़ा महंगे हैं, तो क्या आने वाले 2-3-4 सालों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल या 2-व्हीलर या 3-व्हीलर जो भी हैं उनकी कीमत लगभग एक जैसी हो जाएगी, बराबरी पर आ जाएंगी?
जी निश्चित रूप से, जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं आपको अगर आप बाजार में जाएंगे अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे आपको अभी भी व्हीकल मिल जाएंगे जिनकी कीमतें अभी भी पेट्रोल के बराबर होगी, लेकिन यहाँ मुद्दा कीमत से बढ़ के ये है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि क्या हमें अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बेहतरीन कीमत पे कॉम्पिटिटिव प्राइस जो हमारा पेट्रोल के मुकाबले है उस पे मिलेगा या नहीं, मुद्दा ये है। मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से देश के अंदर गवर्नमेंट का सपोर्ट है इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को, जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी अपने बजट की स्पीच में बोला है कि उनका सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए बना रहेगा, और जिस तरीके से नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नई इनोवेशन ला रहे हैं, बैटरी की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री को अच्छा कर रहे हैं, उस नजरिए से मैं ये मानता हूं कि अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में अभी अवेलेबल होने स्टार्ट हो गए हैं, तो मुझे ये लगता है कि कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हमें जरूर एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट भी मिलेगा।
यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनका जो सर्विस सेंटर का नेटवर्क है, क्योंकि बिक्री के बाद ग्राहक को, एक उपभोक्ता को एक अच्छी सर्विस मिल सके, वो कहीं ना कहीं अभी कुछ काम किया जाना उस दिशा में भी जरूरी लगता है आपको?
इस दिशा में काम कर रहे जाना बहुत जरूरी है। हमें ये लगता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट इस पॉलिसी के अंदर भी 3 साल का वारंटी पीरियड मैंडेटरी है, और आप तमाम वाहनों पे आप देखेंगे कि किसी का वारंटी 5 साल, किसी का 10 साल, हमेशा चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो कुछ ना कुछ वारंटी दिया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जिनमें कहीं ना कहीं फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे, और आफ्टर सर्विस भी एक बड़ा मुद्दा रहा है कि बहुत सारे लोगों का ये शिकायत रहा है कि उनकी जो वाहन है वो खराब होने के बाद बहुत लंबे समय तक सर्विस सेंटर से नहीं आता है, या फिर बहुत ही ज्यादा उनको कॉस्ट उसका पड़ता है रिपेयर का। तो अगर उस नजरिए से हम देखें तो जरूर आफ्टर सेल सर्विस जो जिसकी हम बात करते हैं वो निश्चित रूप से कंपनियों को अपना बेहतर करना होगा। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें एक अहम भूमिका निभाने की जरूरत है कि वो कहीं ना कहीं एक चेक एंड बैलेंस का एक मैकेनिज्म क्रिएट करे कि जिससे अगर आपने इतना व्हीकल बेचा है तो इसके हिसाब से आपको इतना सर्विस सेंटर भी खोलना होगा। तो इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म अगर आता है सरकार की तरफ से तो ये डेफिनेटली एक स्वागत वाला कदम होगा।
नितिन कुमार जी, आपने समय निकाला और हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना 2024 पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे पत्रकार नितिन कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विशाल शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।